अंकेश कुमार की आवाज़ में बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान पेपर सेकंड चैप्टर वामपंथी आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष में योगदान। गांधीवादी और वामपंथी आंदोलनों की विचारधारा का उत्थान भारत में समकालीन था। 1919 के अमृतसर अधिवेशन और 1920 के कलकत्ता के अधिवेशनों से भारत के में गांधीवादी का युग हुआ। सार्वजनिक आंदोलन का युग आरंभ हो गया था। कांग्रेस का संदेश ग्रामीण क्षेत्रों और कृषकों तक पहुंच गया था, यद्यपि औद्योगिक श्रमिक राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रभाव में अधिक नहीं आए थे। वामपंथी सिद्धांत औद्योगिक श्रमिकों तथा छोटे बुजुर्ग वर्ग को अधिक आकर्षित करता था। समाजवादी सिद्धांतों के आर्थिक और राजनीतिक तत्वों के अतिवादी युवा दल बहुत आकर्षित हुआ। श्रमिकों और कृषकों के दल बंबई बंगाल पंजाब में संगठित किए गए। इनका गठन वर्ग पद्धति के अनुसार किया गया, जिससे कि सदस्यों की मांग को बढ़ावा मिला। अपने राजनीतिक कार्यक्रम में ये दल साम्राज्य विरोधी थे, परंतु स्वराज की प्राप्ति के लिए सीधी कार्रवाई का समर्थन करते थे। गांधी जी ने अपने सामाजिक आंदोलन स्वराज की प्राप्ति के लिए आरंभ किए। सब कुछ समय के लिए गांधी जी का आंदोलन ठंडे पड़ गए। वामपंथी विकल्प जनता का ध्यान आकर्षित करने में सफल हुए। वामपंथी दलों ने इस संघर्ष को त्रिपक्षीय रूप दिया, अर्थात वे न केवल विदेशी साम्राज्यवाद के विरुद्ध ही थे, अपितु भारतीय पूंजीपतियों के शोषण के विरुद्ध भी थे। वामपंथी दलों ने कभी गांधी जी को और कभी गांधी जी की कार्यप्रणाली की आलोचना की, और ये लोग कांग्रेस की छत्रछाया के नीचे साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष में सम्मिलित हो जाते थे, और कभी ये लोग स्वतंत्र कार्रवाई अपना लेते थे। वामपंथी विचारधारा के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां। भारत में वामपंथी विचारधारा प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत फैली। राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों के अंधकार में वातावरण के कारण उभरी और यह अनिवार्य रूप से साम्राज्यवाद विरोधी राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ संलग्न हो गई। परिस्थितियां निम्न थी। पहला, प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत देश की आर्थिक स्थिति बहुत शोचनीय हो गई थी। दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के मूल्य बहुत बढ़ गए थे। व्यापारियों ने अनैतिक लाभ कमाने के कारण देश में अकाल की स्थिति बन गई थी, और साम्राज्यवाद का सबसे घिनौना पक्ष सामने आ रहा था। दूसरा, मार्क्स के क्रांतिकारी विचारों से लोग रोमांचित हो गए थे, और फिर उन्होंने यह भी देखा कि किस प्रकार रूस में साम्यवादी सरकार अस्तित्व में आई। इन सामाजिक तथा आर्थिक विचारों से बुद्धिजीवियों, राजनीतिक नेताओं, आतंकवादियों और श्रमिकों के विचारों में एक उथल पुथल मच गई, और वे इस नवीन आर्थिक व सामाजिक तत्वों से भरे सिद्धांत की ओर आकर्षित हो गए। तीसरा, गांधी जी के स्वदेशी और स्वराज के नारे ने और अपने विचारों को कोने कोने में ले जाने के प्रयत्न ने इस राजनीतिक आंदोलन को एक नया रूप दे दिया। अब कृषक और श्रमिक दोनों ही वर्ग इस राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित हो गए। ये नई परिस्थितियां ऐसी थी जिनमें समाजवादी आंदोलन बड़ी सफलता से पनप सकता था। चौथा, शिक्षित मध्य वर्ग का वह अंग जो अब अंग्रेजों की 19वीं शताब्दी की उदारवादी नीतियों में सनाए सनाए विश्वास खो बैठा था, और जिसे अब बेकारी स्पष्ट रूप से सामने नजर आती थी, वह भी इस ओर आकर्षित हो गया और व्यक्तिगत आतंकवाद तथा इसकी नवीन क्रांतिकारी और समाजवादी विरोधी विचारधारा की ओर आकर्षित हुआ। पांचवा, इनमें से अतिवादियों का एक भाग गांधी जी के क्षीण और तरल सुधारवाद से बहुत असंतुष्ट था, और उन्होंने प्रतिक्रियावादी शक्तियों का नेता मानता था, और उनके अहिंसावाद को अंग्रेजी साम्राज्यवाद उनके सहयोगियों के विरुद्ध वास्तविक लोकप्रिय संघर्ष के उभारने में रुकावट समझता था। ये अतिवादी शासन और आर्थिक आधार सहित रहित स्वराज के कोई मत देने को तैयार नहीं थे। वामपंथी आंदोलन मुख्य रूप से दो धाराओं में विकसित हुई। ए, साम्यवाद जो अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन के एक भाग के रूप में कार्य करता था और मुख्य रूप से कॉमिंटर्न के प्रभाव में कार्य करता था, और बी, दूसरे कांग्रेस समाजवादी दल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वामपंथी दल के रूप में कार्य करता था और जो लोकतांत्रिक समाजवाद के दर्शन से प्रेरणा प्राप्त करता था। भारत का साम्यवादी दल और इसकी राष्ट्रीय संघर्ष में भूमिका। यदि हम भारतीय साम्यवादी दल के विकास और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लगाए जाने वाली लगातार पलटनबाजियों का अध्ययन करें, तो हमें इनका अध्ययन दो पर विरोधी पृष्ठभूमियों, भारतीय राष्ट्रवाद के प्रति और अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन के प्रति निष्ठा की पृष्ठभूमि में करना होगा। कभी कभी ये निष्ठाएं आपस में विरोधी हो जाया करती थी, जैसे 1942 में। ऐसी परिस्थितियों में भारतीय साम्यवादी दल प्रायः कॉमिंटर्न के अनुसार ही कार्य करता था, जिससे यह दल बहुत से राष्ट्रीय नेताओं की दृष्टि में अवसनीय हो गया था। भारतीय साम्यवादी दल का मन्य विकास। मार्क्सवाद अपने व्यापक विश्वव्यापी संदेश के लिए प्रसिद्ध हो गया, और 1917 की रूसी क्रांति के शीघ्र ही पीछे कुछ भारतीयों को अपनी आकर्षित करने में सफल हुआ, परंतु एक सुसंगठित साम्यवादी दल के रूप में उभरने में बहुत समय लगे। 1920 के अंतिम चरणों में श्री एम एन राय ने तथा अवनी मुखर्जी तथा कुछ अन्य खिलाफत आंदोलनकारियों की उत्प्रेरणाओं ने सोवियत भूमि पर जाकर ताशकंद में भारतीय साम्यवादी दल के गठन की घोषणा की। 1921 में उन्होंने भारत लौटने का प्रयत्न किया, किंतु असफल रहे। अतः 1931 में मास्को में पूर्व के पश्चिमी वर्ग के लिए साम्यवाद विश्वविद्यालय कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी फॉर टेलर्स ऑफ द ईस्ट में भर्ती हो गए। भारत में 1918 से 22 तक होने वाली श्रमिक अशांति के कारण उन्हें अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त हुई, और बंबई, कलकत्ता, कानपुर, लाहौर और मद्रास के औद्योगिक क्षेत्रों में साम्यवादी संस्थाओं की स्थापना हुई। बंगाल में नवयुग के संपादक मुजफ्फर अहमद, बंबई में सोशलिस्ट के संपादक श्रीपाद अमृत डांगे, लाहौर में इनकलाब के संपादक श्री गुलाम हुसैन और मद्रास में सिंगारवेल चेट्टियार साम्यवादी विचारधाराओं के अग्रदूत और प्रसार करने वाले बने, और इन्होंने श्रमिकों तथा कृषकों की संस्थाओं के गठन के लिए प्रयत्न किए। 1928 से 34 तक भारतीय साम्यवादी दल ने अत्यधिक वामपंथी रुख अपनाया, और गांधी और नेहरू जैसे राष्ट्रीय नेताओं पर प्रहार किए, और कांग्रेस को भारत में पूंजी पति वर्ग की संस्था जो कि परिश्रमी वर्ग के